इससे पहले हम देख चुके हैं मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है, और इस किस्से में हम पहले देख चुके हैं अल्लाह ताला के एहसानात मूसा अलैहिस्सलाम पर, और कैसे अल्लाह ताला ने उनको नबुवत अता फरमाई, फिर उन्होंने अल्लाह ताला से क्या क्या चीजें मांगी और मदद भी मांगी अल्लाह ताला से, अपने भाई के लिए नबुवत भी मांगी, अपनी जुबान की गिरा का कुल्ला भी मांगा, आसानी भी मांगी अपने काम में। और इंसान हमेशा अल्लाह ताला से अपने हर काम में आसानी मांगता रहे, जिस मिशन पे भी वो हो, बेशक वो अल्लाह के दीन का ही काम हो, लेकिन उसमें अल्लाह ही से आसानी मांगनी कि बेहतरीन तरीके से ये काम किया जा सके। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन आमने सामने हो गए, तो कैसे फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि हम भी लेकर आएंगे ऐसे जादू जैसे तुम लाए हो, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का जादू नहीं था। मगर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम इसके ऊपर राजी हो गए, और जब एक मुकाबला हुआ तो उसमें बेशुमार जादूगर शामिल हुए, और कैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा दिया, फतह दी, और सब ने ये देखा। और फिर जो कुछ जादूगरों के साथ फिरौन ने कहा था कि मैं ये करूंगा, और बहुत ही इबरतनाक किस्म की सजाओं का उसने जिक्र किया जो सुन के भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि जादूगरों पर कोई भी असर नहीं हुआ इसका, और उनके ऊपर बजाय इसके कि वो इससे खौफजदा हो जाते या वो प्रेशर में आ जाते, फिरौन की बात का को अपने ऊपर तारी कर लेते, उनका हाल ये था कि जब ईमान उनके अंदर आ गया और एक अल्लाह को मान लिया अपना रब, तो फिर देखें कैसे उस ईमान ने उनकी काया पलट दी, उनके अंदर वो खुशू और वो आखरत की फिक्र और अपने गुनाहों की बख्शिश की फिक्र कैसे आ गई उनके लिए, फिर सबसे बड़ी चीज क्या बन गई, यानी प्रायोरिटी जिंदगी की बदल गई, सोच बदल गई, रंग ढंग ही बदल गया सोचने का और बात करने का, और वो चीजें जो बहुत अहम थी पहले कैसे एकदम वो सब चीजें जीरो हो गई, और वो चीज जिसकी तरफ सोचा भी नहीं था वो सबसे अहम बन गई। थोड़ी देर पहले वही जादूगर फिरौन से कह रहे थे कि अगर हम जीत गए तो हमें क्या दोगे, तो उसने कहा था मैं तुम्हें अपने पास दरबार में बहुत आला मुकाम दूंगा, पढ़ चुके हैं ये बात, बड़े इनामो इकराम से नवाजूंगा। और उसके बाद वो इनामो इकराम, वो जा, वो मर्तबे, वो सब चीजें जरा देर में ही क्या ऐसा हो गया कि वो सब चीजें उनको कुछ भी हैसियत नहीं उनके सामने रखती थी, कुछ भी नजर नहीं आने लगी। तो हमने देखा कि ईमान इंसान को कैसे बदल देता है, हमने ये देखा कि ईमान आ जाने के बाद इंसान के रवैये में कैसी चेंज आती है, उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत अहम लेसन है कि हम देखें कि कहाँ पे हमारे अंदर कमियां हैं। हम बहुत अरसे तक सोचते रहते हैं कि हम बदलें, हमारे अंदर चेंज आनी चाहिए, हम ऐसे क्यों है, हम क्यों नहीं इस तरह से मजबूत ईमान वाले बन जाते, इसलिए कि कमजोरी अंदर है, कमजोरी ईमान की है। ईमान में जब मजबूती आती है तो अमल में मजबूती आती है, ईमान में जब मजबूती आती है तो इंसान को वो जो चीजों को देखने की नजर होती है ना, वो उसकी बिल्कुल ही बदल जाती है। ठीक है, तो असल इसका मतलब है मैं वर्क कहाँ पे करना है, अपने ईमान को मजबूत करने पे वर्क करना है। फिर आप देखेंगे कि कोई हुक्म भी अल्लाह का मानना मुश्किल ही नहीं रहना, किसी चीज से डर ही नहीं लगेगा, कोई नुकसान बड़ा नुकसान नहीं लगेगा, कोई दुनिया का फायदा बहुत बड़ा दुनिया का फायदा नहीं लगेगा, हर चीज फिर आखरत के एतबार से आप सोचने लगेंगे। तो ईमान इंसान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लाता है, और हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती, ईमान हमारा कमजोर है। जब ईमान ही कमजोर है तो कैसे चेंज आए, ईमान ही कमजोर है तो अमल में कैसे रसूख आए, तो ईमान पे वर्क करना है। अब आम लोग थे, ये कोई पैगंबर नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई पैगंबर की सोहबत में अरसाए दराज तक रहे हों, जैसे सहाबा कराम तालीम ली उन्होंने पैगंबर से, या उन्होंने बहुत उनके साथ साथ चल के उनसे तरबियत हासिल की हो, या कुछ कुछ भी ऐसा नहीं था। इसका मतलब है कि ईमान ही वो बीज है जिससे कि मजबूत पौधा उगता है अमल का। तो बहुत बड़ा हमारे लिए लेसन है इसके अंदर। अब आगे पढ़ते हैं हम इंशाल्लाह कि उसके बाद क्या हुआ। वलकद औहैना इला मूसा, और अलबत्ता तहकीक वही की हमने मूसा अलैहि सलाम की तरफ। क्या वही की? अन असरी बी इबादी, कि रातों रात लेके चले मेरे बंदों को। फद्रिब लहुम तरीकन फिल बहरी यबसन, फिर बना ले उनके लिए रास्ता समुंदर में सूखा। अब बहुत अरसा गुजर गया, जब ये ऐसे नहीं है कि अगले दिन ही ऐसा हो गया, बहुत अभी फिरौन की ये सारा मारका उसके साथ हुआ है और उसके बाद अगले दिन ही वो चल पड़े लेके, ऐसा नहीं हुआ। बहुत अरसे तक मूसा अलैहि सलाम कोशिश करते रहे, लेकिन फिरौन अपनी सरकशी में और जुल्म में बढ़ता ही चला गया, वो वर्स होता जा रहा था, वर्स होता जा रहा था। और बनी इसराइल पे तो उसने अपने जुल्म की इंतहाई कर दी थी। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम की तरफ वही की, क्योंकि अब चांसेस फिरौन के लिए खत्म हो गए थे बदलने के, बाज आ जाने के। इतने चांस शायद ही दुनिया में किसी को मिले हों जितने के अल्लाह ताला ने, उसकी रहमत है कि उसने फिरौन को दिए, फिरौन जैसे आदमी को भी इतने चांस दिए कि वो बदल जाए, वो अपने आप को सुधार ले। और अल्लाह ताला चांसेस देता है इंसानों को, मगर अफसोस की बात यह है कि इंसान उन चांसेस को ना खुली छुट्टी समझ लेता है, और उनको जब जब कोई इंसान बार बार गलत करता है और कहीं पकड़ नहीं आती, पहले तो वो शुरू में तो डरता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, अल्लाह की तरफ से कोई सजा ना आ जाए, तो शुरू में डरता है। लेकिन फिर जब कोई सजा भी नहीं आती तो इंसान दलेर हो जाता है, फिर सोचता है कि इस दफा मैं गेट अवे हो गया तो अगली दफा भी हो जाऊंगा। और फिर जब वो मुसलसल गुनाह करता रहता है तो फिर उसको ये ख्याल आने लगता है, मैं तो सालों से ऐसा ही कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं होता। पता नहीं उसको जहन में ये होता है कि अल्लाह ताला नाउजुबिल्ला भूल गया है, या वो इस बात से बॉदर ही नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं ये कर भी रही हूँ तो उसको नहीं फर्क पड़ता, या उसने मुझे शायद पकड़ना ही नहीं है, वो साथ साथ मुझे माफ करता ही जा रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये ऐसे ही मौलवियों की बातें उन्होंने बनाई हुई है, अल्लाह ताला उन्हें थोड़ी इतनी सी बातों पर पकड़ना। ये बहुत बड़ी भूल होती है इंसान की, और इसी भूल में फिरौन भी मुबतला हुआ, और आज हम सब भी मुबतला है। हम सब अल्लाह की दी हुई ढील को खुली छुट्टी समझ बैठते हैं और ना डर हो जाते हैं गुनाह करते हुए, और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ होना होता तो अब तो हो ना जाता, तो कुछ भी नहीं हो रहा, देखो सारे ही कर रहे हैं, उनको भी नहीं कुछ हो रहा, मुझे भी नहीं कुछ हो रहा, तो लिहाजा ये सही ही है करना। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला पकड़ता है ना, तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है, और टाइम टू टाइम वो छोटी छोटी चीजें भेज के भी इंसान को रिमाइंडर देता रहता है, थोड़ा सा उसको हिलाता है, थोड़ा सा उसको झंझोड़ता है, थोड़ी सी कोई आफत आती है, थोड़ी सी उसको वेकअप कॉल मिलती है, लेकिन उसको ये समझ ही नहीं आती है मेरे लिए वेकअप कॉल्स है। जैसे कि फिरौन के लिए आया, कई मेंढकों का अजाब, कई जुओं का अजाब, कई टिड्डियों का अजाब, कई फलों में कमी कहत साली, कहीं खून का अजाब, इस तरह के अजाब आते जाते थे, बस उसको समझ नहीं आ रही थी। आके मूसा अलैहि सलाम से सब फिरौनी कहते थे कि अब ये अजाब हमसे टाल दें तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। हमारी भी तो जिंदगी में वेकअप कॉल्स आती है ना, कभी कोई हादसा आ जाता है, कभी कोई परेशानी ऐसी आ जाती है, कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उठते नहीं है, हम फिर भी उसी डगर पे चलते रहते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, ये जिसको कहते हैं कि गर्दिश जमाना है, ऐसे तो होता ही रहता है, फिर भी हम उसको अपनी जिंदगी को पलटाने का जरिया नहीं बनाते। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला एक दिन बस अचानक पकड़ेगा और उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले भी हमें बार बार कहा जाता है हमें पहले भी नॉक किया जाता है अगर हम जागते नहीं है, ठीक है, हत्ता कि फिर एक दिन मौत आ जाती है, फिर तो जागना ही है सबने। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम की तरफ वही की, अन असरी भी इबादी, कि मेरे बंदों को लेकर चले। आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे बनी इसराइल नहीं कहा गया, भी बनी इसराइल के, बनी इसराइल के साथ लेके चले, नहीं, क्यों कहा गया इबादी, मेरे बंदों को। एक तो वजह यह भी बताई जाती है कि बनी इसराइल के साथ फिरौन की कौम में से जो ईमान ले आए थे वो भी शामिल थे, लेकिन स्टिल अरबिक में जो ज्यादा होता है उस चीज को मेंशन की कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वालिदैन, दो वालिद है इसका माना, हालांकि वो दो वालिद नहीं, एक वालिद है और एक वालिदा है, लेकिन एक को कह के बात कर दी जाती, तो यहाँ पे तो बनी इसराइल कहा जा सकता था, जबकि वो दूसरे तो बहुत कम लोग थे। फिर आप सोचे कि क्यों ये बात ही कहा गया, असल में इसमें बहुत ही मोहब्बत है, शफकत है और तसल्ली है कि तुम मेरे बंदे हो, तुम फिक्र ना करो। और जब किसी कौम पर इतने मजालिम आ रहे होते हैं, इतना ज्यादा उनके ऊपर कहर टूट रहा होता है, अब इस बादशाह ने, फिरौन ने कोई कमी नहीं की थी, तो जानते हैं जब इंसान के ऊपर कड़े हालात आते हैं ना, तो ये शैतान एक सोच अंदर डालता है और वो इंसान को कहता है कि अल्लाह को पता नहीं तेरी परवाह ही नहीं है, अल्लाह ताला ने तो तुझे छोड़ ही दिया, इसीलिए तो तेरे ऊपर ये आ रहा है, इतनी मुश्किल देख, तेरे ऊपर कितनी मुसीबत आ रही है, बस उसने तुझे छोड़ दिया। और इंसान मायूस होने लगता है, उसको लगता है मैं तन्हा रह गया हूं। अब ये ईमान वाले लोग थे उस वक्त के मुसलमान, तो अल्लाह ताला इनको बता रहा है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, तुम मेरे बंदे हो। जब मजालिम बहुत बढ़ जाए तो तब भी ये ना समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वो इम्तिहान होता है इस कौम का भी, और वो जालिम बादशाह को भी अल्लाह ने ढील दी होती है। तो ये बहुत मोहब्बत भरा खिताब है, आपको पता है ना, अल्लाह ताला किसी को आबदी कह दे, मेरा बंदा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए ये आया, आप देखें सूरह इसरा के शुरू में भी आया। तो इबादी कहना उनके लिए बड़े ऑनर की बात है कि मेरे बंदे हो तुम, सुभान अल्लाह। तो बता दिया गया कि फिरौन की तरफ नहीं है अल्लाह, फिरौन को तो नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो मेरा बंदा है, के सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन ये खास खिताब होता है किसी के लिए। फिरौन को ये नहीं कहा, हालांकि देखने में ऐसे लग रहा था दुनियावी तौर पे कि पता नहीं अल्लाह ताला तो इसके साथ ही है, क्योंकि इसका ही सारा जोर चल रहा है, इसी को फ्री हैंड दिया गया, तो कोई सोच सकता है ना कि पता नहीं अल्लाह इसकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया में बाज जगह पे ऐसे मजालिम है कि यूं लगता है कि पता नहीं इनके कोई भी देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, पता नहीं इनकी कहीं सुनवाई ही नहीं, वो जुल्म सह रहे हैं और साल हा साल से सह रहे हैं, और उनके पास और कोई हथियार नहीं, पत्थरों से मुकाबले कर रहे हैं, पत्थर मारते हैं बस, कोई पूछने वाला नहीं है उनका, और कुफर अपना जोर चला रहा है। वही बनी इसराइल जो उस वक्त मजालिम सहने वाले थे, आज वही जुल्म करने वाले बन चुके हैं, और उनके मुकाबले में बाज मजलूम है। तो याद रखिए, अल्लाह ताला जालिम के साथ नहीं होता, चाहे आपको लगे कि इसको बहुत ताकत मिली हुई है, आजादी मिली हुई है, ये तो जो कुछ मर्जी करता फिरता है, और अल्लाह ने पता नहीं हमें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। और कितना अरसा गुजर गया था कि इनके ऊपर मजालिम हो रहे थे, कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। तो अब कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम को जब वही की गई है कि अब आप मेरे बंदों को लेकर निकलें और आप इनके लिए रास्ता बनाइएगा, तो एक तो वैसे भी रास्ता बनाने के लिए आता है, दूसरा ये भी एक इंडिकेशन है, आसा मारेंगे तो रास्ता बन जाएगा, वहां पानी ने खड़ा हो जाना था, समुंदर फट जाना था और सूखा भी हो जाना था। तो ला तखाफु दरकन वला तखशा, आप डरना नहीं, खौफ नहीं खाना, वही दिल में इस चीज की परेशानी ना आए, किस चीज की, अब ये ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, इससे पता चलता है, यानी किसी बात की भी ना, ये नहीं कहा गया फिरौन से ना डरना, गर्क होने से ना डरना, कि उसकी फौज से ना डरना, किसी चीज से भी ना डरना, अब क्या होगा आगे इससे ना डरना। तो ये उनको एक बात बता दी गई कि आपने डरना नहीं है, अल्लाह आपके साथ है, आप अल्लाह के बंदे हैं, और ये बहुत बड़ी तसल्ली की बात थी, क्योंकि ऐसे हालात में खौफ का आना भी और एक रोब तारी हो जाना, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये एक नेचुरल बात होती है। और आप ये भी देखें ना कि मूसा अलैहि सलाम ने कितने बनी इसराइल को लेकर जाना था, दो चार लोगों, फिर भी उनके साथ चलना आसान होता है, 6 लाख लोग थे जिनको लेके चलना था, और ये कोई आसान काम तो नहीं था, और फिर साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, कोई बीमार है, साथ मवेशी चलाए हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इतना बड़ा काफला है, और पीछे उस वक्त की सुपर पावर, उसको जब पता चलेगा कि ये कहाँ निकल गए, तो उसने रुकना थोड़ी था, लाजमी पीछा करना था, तो पहले ही बता दिया गया आपने डरना नहीं है, अब जब चलेंगे तो आगे समुंदर आ गया, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किधर जाना है, और पीछे फिर उनकी कौम खड़ी भी थी, उसके फौजी खड़े भी थे, तो वो घबरा के बनी इसराइल बोले इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए ए मूसा। और मूसा अलैहि सलाम जवाब में कितने मुतमईन है, क्या जवाब देते हैं, वो कह रहे हैं हाय अब हमारा क्या बने, आप खुद अंदाजा कीजिए ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आ जाती है, समझ ही नहीं आता, ऐसे लगता है बंद गली में आके खड़े होगा, ना आगे जा सकते ना पीछे, आगे समंदर है, पीछे वो फौज खड़ी भी, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इसके जवाब में मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, अनकरीब मुझे रास्ता दिखाएगा, हालांकि रास्ता तो कोई नहीं नजर आ रहा। अब ये कहना बजाहिर देखने में आंखों के साथ देखें तो कुछ भी नहीं रास्ता नजर आ रहा, कितनी डेस्परेट सिचुएशन, लेकिन मोमिन के लिए नहीं, देखिए वो जिसको कहते हैं ना कॉट बिटवीन द डेवल एंड द डेड सी, वो वाली बात थी, ना आगे ना पीछे, कुछ भी कहीं पे भी नहीं है रास्ता, और वो कह रहे हैं कि मुझे मेरा रब रास्ता दिखाएगा, मेरा रब मेरे साथ है, ये वो यकीन है, ये है ईमान, इसको ईमान कहते हैं, कि जरूर रास्ता निकलेगा, कि जब हालात जो है ना इतने मुश्किल हो जाएं कि अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, सारी दुनिया साथ छोड़ दे, रिश्ते नाते कोई नहीं है, कोई ताकतें, कोई पैसा, कोई चीज भी काम नहीं दे रही, उस वक्त इंसान, इस वक्त में जो बिल्कुल पिच डार्कनेस का वक्त है, बिल्कुल मायूसी का वक्त हो, उस वक्त इंसान कहे मेरा अल्लाह है ना मेरे साथ, ये होता है ईमान, सुभान अल्लाह, ये होता है ईमान के जिसकी वजह से इंसान का दिल थम जाता है, और जब तक ये होता है ना कि फलां मदद कर देगा, फलां है ना वो मेरे काम आ जाएगा, मेरे तो फलाने बड़े कॉन्टेक्ट है, मेरे तो फलाने भी हैं, तो वो मुकम्मल अल्लाह पर तवक्कल आता नहीं है, फिर मुकम्मल तवक्कल तभी आता है जब सब जगह से उम्मीदें कट जाती हैं, और एक अल्लाह पर 100% भरोसा हो, ये भी नहीं कि 10% को शायद अब अल्लाह ही मेरी मदद कर दे, नहीं, 100% भरोसा है मूसा अलैहि सलाम को कि वो घबरा नहीं रहे, वो उस वक्त में पैनिक नहीं हो रहे, वो भागे फिर नहीं रहे, हाय अब क्या होगा, अल्लाह तूने तो मुझे कहा था कि ना डरना और ना, और ऐसा कोई रास्ता निकलेगा, ये क्या हो गया मेरे साथ, हाय अब मैं क्या कौम को जवाब दूं, कुछ भी नहीं, इन्ना माया रब्बी सयहदीन। कभी हम इस बात को याद रखें अपने मसाइल में कि इन्नमा या रब्बी सयहदीन, ये है अल्लाह पर भरोसा करना, जाहिरी असबाब तो साथ छोड़ चुके, कोई जाहिरी सबब नहीं नजर आ रहा, बस इंसान कहता है अल्लाह बस तू तो है ना, अब मैं तो बिल्कुल ट्रैप हो गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह गया, तब जब इंसान अल्लाह से उम्मीद रखता है तो याद रखें कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अकेला कभी नहीं छोड़ता, वो आपको बनी इसराइल के नौजवान का वाकया पता है? वो कहते ना कि बनी इसराइल का एक नौजवान था, वो ऐसा हो गया हुआ था कि बस यानी इतना बुराइयों में पड़ चुका था, बदमाश, शराबी, जुआरी, जो भी बुराई थी, तो शहर वालों ने उसको शहर से निकाल दिया कि भाई अब ये नहीं हमारे साथ रह सकता। तो खैर उसको निकाल दिया तो वो जंगलों की तरफ चला गया। वहां पे गया तो फिर बीमार पड़ गया और मरने के करीब उसकी हालत हो गई। अब जब मरने के करीब आया ना, तो उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई भी नहीं है, ना कोई साथी संगी, ना कोई पूछने वाला, ना कोई दवा, ना कोई गिजा, कुछ भी नहीं। सारे असबाब टूट गए, खत्म हो गए और मौत के आसार हैं। तो आसमान की तरफ देख के कहने लगा, या अल्लाह, अगर मुझे अजाब देने से तेरा मुल्क बढ़ जाता है ना, तो तू मुझे अजाब दे दे, लेकिन अगर मुझे अजाब देने से तेरा मुल्क घटता नहीं है, तेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं आनी, तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे अजाब ना दे। तेरा मुझे माफ कर देने से कौन सा तेरी बादशाहत घट जानी, तो अल्लाह मुझे माफ ही कर दे। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं, सबने मुझे छोड़ दिया, अल्लाह तू ना मुझे छोड़ना, मुझे अजाब देने से अगर तेरी बादशाहत बढ़ जाती, दे दे फिर अजाब, अगर नहीं बढ़ती तो अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, सुभान अल्लाह। और ये कह के उसकी जान निकल गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया, मेरा एक दोस्त है फलां जंगल में मर गया, उसको जाओ लेकर आओ, उसको गुसल दो, कफन दो, जनाजा पढ़ो, और जो भी उसके जनाजे में शिरकत करेगा उसकी भी बख्शिश है। लोग भागे भागे गए कि हम जाके देखे कौन अल्लाह का इतना दोस्त, तो वो ही शराबी, वो ही बदमाश। लोग कहने लगे, मूसा ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो ऐसा है कि हमने तो इसको शहर से निकाल दिया था, तो आप कह रहे हैं ये अल्लाह का दोस्त है। तो अल्लाह मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं, ये अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं और तू कह रहा है मेरा दोस्त। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये भी ठीक कहते, मैं भी ठीक कहता, ये ऐसा ही था, लेकिन मौत के वक्त जब इसने कोई हर तरफ देखा, कोई भी ना मिला ना, कोई दोस्त नहीं, कोई प्यारा नहीं, कोई संगी साथी नहीं, कोई नजर नहीं आया, जब चारों तरफ से इसको मायूसी हो गई, बेबस हो गया बिल्कुल, तो इसने मुझे पुकारा और मुझे शर्म आई कि ये अकेला तन्हा यहाँ पे पड़ा हुआ है और बेबसी से मुझे पुकार रहा है, तो मैं इसको इसके गुनाहों की वजह से पकड़ू। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत की कसम, उसने तो सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी, अगर वो उस बाकी सब की भी बख्शिश मांग लेता तो मैं उस सबको माफ कर देता, सुभान अल्लाह। तो बात यह कि जब इंसान हर तरफ से ट्रैप हो जाता है, पकड़ा जाता है, वो बेबस हो जाता है, फिर वो अल्लाह को पुकारता है कि अल्लाह तू है और मुझे यकीन है कि तू मेरे लिए कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को ये बंदा बड़ा पसंद आता कि उसको यकीन है कि वो ताकतों का मालिक, वो कुव्वतों का मालिक, और उसको असबाब की जरूरत नहीं, असबाब की जरूरत तो मुझे है, उसको नहीं है जरूरत, वो हर चीज करने पे कादिर, मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा मगर उसको किसी रास्ते की जरूरत नहीं। तो जब इंसान अपनी आजजी का इजहार करता है, अपनी बेबसी का इजहार करता है, अल्लाह के आगे गिर पड़ता है, तौबा करता है इस तरह, तो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आती है। और ये जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का जो कलमा है, वो पता है ये भी इसमें भी तो यही चीज है, आप अपनी बेबसी का ही तो इजहार कर रहे होते हैं अल्लाह के सामने, नहीं मेरे अंदर कोई कुव्वत, कोई ताकत नहीं, ना नेकी करने की, ना गुनाहों से बचने की, मेरे अंदर नहीं कोई ताकत है। अल्लाह का ताकत तो सिर्फ तेरे पास है, ना कोई खुशी हासिल करने की, ना किसी प्रॉब्लम से निकलने की ताकत, ना कोई परेशानी दूर करने की ताकत, ना खुशियां लेने की ताकत, ना कामयाब होने की ताकत, ना नाकामी से बचने की ताकत, किस चीज की भी ताकत मेरे पास नहीं, अल्लाह तेरे पास है। इसीलिए बहुत बड़ा कलमा है, जन्नत का खजाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। सहाबी आए थे ना, या रसूल मुझे वसवसे बहुत आते हैं, तो आपसे सर मैंने फरमाया ये कलमा 100 दफा पढ़ा करो, इससे ये नफ्सियाती ये जो वसवास होते हैं ये भी दूर हो जाते हैं, और फरमाया 100 मसले इससे हल होते हैं, 100। अब आप गिन के देखे हमारे तो 100 मसले भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इंसान ये कह देते ना सिवाय तेरे तो कुछ कर ही कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी कहाँ ताकत है, मेरी कहाँ कुव्वत है, औलाद को अल्लाह तू ही बचा सकता है हर शर से, मेरे अंदर कहाँ कुव्वत है कि मैं लड़ू या मैं अपनी औलाद को बचा सकूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इस पे मेरे अंदर कहाँ ताकत है इनको नेकी के रास्ते पे लाने की, औलाद के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश है, मेरे पास कहाँ ताकत है, सिवाय तेरे कोई कर ही नहीं सकता। तो ये तकरार करके तो देखें, सब अपना मसला हर परेशानी उसके सामने इस तरह से रख के तो देखें कि मेरी अकल भी कुछ नहीं, मेरा फहम भी कुछ नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट्स कुछ नहीं, मेरी ताकतें कुछ नहीं, मेरी कुव्वतें कुछ नहीं, मैं बेबस हूं अल्लाह, मेरे अंदर कोई भी ताकत और कुव्वत नहीं, सिर्फ तेरे पास है। तो ये है उस पे एतमाद, आपने उस पे जब एतमाद कर लिया ना, आप बंदों में से भी किसी के ऊपर एतमाद करते हैं तो अगर वो अच्छा बंदा होता है तो कहता नहीं जिसने मुझे इतने मान से कहा, इतना एतमाद मेरे पर किया, मैं इस तरह तो नहीं कर सकता। तो जो अल्लाह पर एतमाद कर ले, भरोसा कर लेता है, फिर अल्लाह ताला कैसे उसको अकेला छोड़े। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं ना सयाहदीनी, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम कोई सबब देख नहीं रहे, मगर उनकी नजर असबाब के ऊपर नहीं है, उनको ये पता है कि सबब होगा तब भी तो करना अल्लाह नहीं है, और सबब नहीं होगा तब भी करना अल्लाह नहीं, दोनों तरह से अल्लाह नहीं करना। ऐसे थोड़ी कि सबब होगा तब अल्लाह कर सकता है, सबब नहीं होता तब नहीं कर सकता, ऐसे थोड़ी। गारे सौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बिल्कुल अकेले, काफिर आ गए गार के मुंह के ऊपर खड़े हुए आके, और अबू बकर सिद्दीक खौफजदा हो रहे हैं, अपनी जान का नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का डर है, तो आपने क्या फरमाया था, ला तहजन इन अल्लाह माना, है अबू बकर गम ना कर अल्लाह हमारे साथ। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ही उतार दिया। तो लिहाजा हालात कितने ही मिजरेबल हों, अपना केस आप अल्लाह के सामने तो रखे ना, और बड़े ही एतमाद के साथ रखे, और आपके पास असबाब हों तब भी, ये नहीं कि जब असबाब कट जाए तो तब आप ये कहें, तो जब असबाब हैं, इलाज के लिए पैसे हैं, डॉक्टर बड़े बड़े हैं, अस्पताल भी पहुंच गए हैं, तो अब अल्लाह की क्या जरूरत है, अब तो डॉक्टरों नहीं करना, नहीं तब भी अल्लाह तू नहीं करना, तब भी अल्लाह मैं बेबस हूं, तब भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ठीक है, तो अपनी सारी परेशानियां फिक्रें जिनको हम सॉल्व खुद कर सकते हैं, समझते हैं कि हम कर सकते हैं, उनको भी सॉल्व अल्लाह नहीं करना, और जिनको नहीं कर सकते तो फिर तो बिल्कुल याद रखिए हमारी तो हद जहां पे खत्म हो जाती है अल्लाह की, तो वहां पे शुरू होती है, कोई मसला उसके लिए मसला ही नहीं, इससे बड़ा क्या मसला होगा, खुद इमेजिन करें। आप स्टक हो गए हैं पीछे इतना बड़ा जालिम दुश्मन, वो तो पहले ही इतना जुल्म करना करता था, अब जब वो देखेगा कि ये भाग गए, अच्छा मुझसे भाग रहे, तो अब पता नहीं वो क्या करेगा, सारों को ही सूली पे लटका देगा, उसको क्या है, वो तो नहीं किसी से ना डरता है, तो ना किसी का उसको उसको परवाह है, ना उसमें कोई खुदा खौफी है, और आगे समुंदर है, आगे जाते हैं डूबते हैं, पीछे जाते हैं तो तब मरते हैं, किधर जाए जाए तो कहाँ जाए। जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं इंसान बिल्कुल ही बेबस हो जाता है, तब भी मायूस नहीं होना, क्योंकि इन्नल्लाहा मअना, अल्लाह हमारे साथ है, इन्ना माया रब्बी सयहदी, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। तो ईमान भी तो सीखने की जरूरत है ना, ये इसको कहते हैं ईमान, फिर ईमान वाला कितना मुतमईन इंसान होता होगा ना, हमारी तरह का थोड़ी हमें तो खैर है, हमने सारे कोई काम खुद ही करने हैं, तो फिर भरोसा भी अपने आप पर ही है, और फिर अपने इर्द गिर्द वालों पे है, फिर जब वहां से हमें खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिलता तो फिर बड़े दुखी भी होते हैं, बड़ा अफसोस भी करते हैं, क्योंकि हमने तो समझा था कि यहाँ से हमें मिलेगा, इधर से मदद आएगी, वो तो वहां से मदद कहाँ आनी थी, वो भी बेबस है हमारी तरह, उनका भी क्या कसूर, नहीं हम उनकी तरफ देखते रहे ना।